नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई खंडपीठ ने तिरुप्पारन कुंड्रम पहाड़ी पर स्थित दीपथून स्तंभ पर दीपक प्रज्वलित करने की अनुमति देने के आदेश को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और के रामकृष्णन की खंडपीठ ने कहा कि जिस स्थान पर दीपथून नामक पत्थर का स्तंभ है वो भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का है। पीठ ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से परामर्श के बाद दीपक जलाया जा सकता है। अदालत ने कहा है कि इसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या निर्धारित की जा सकती है। एक रिपोर्ट।
हिंदू मुन्नानी के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता निरंजन एस कुमार ने बताया कि खंडपीठ ने कहा है कि दीपक जलाना अनिवार्य है और इसे तिरुप्पारन कुंड्रम पहाड़ी की चोटी पर ही जलाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता राजेश ने भी न्यायालय के आदेश की प्रशंसा करते हुए कहा कि दीप थून के रूप में दीपक जलाया जाना चाहिए और मंदिर प्रशासन को इसके लिए आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये फैसला तमिलनाडु में हिंदुओं और भगवान मुरुगन के श्रद्धालुओं की जीत है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल ने कहा कि इस फैसले से तिरुप्पारन कुंड्रम पहाड़ी पर प्राचीन मंदिर के श्रद्धालुओं को न्याय मिला है जहां भगवान मुरुगन विराजमान है। श्री गोयल ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य सरकार ने दीप प्रज्वलित करने की अनुमति देने के न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील की, जो स्पष्ट रूप से हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज देश की 5 शास्त्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और ओडिया की 55 दुर्लभ साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया। इन पुस्तकों का प्रकाशन केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान द्वारा किया गया है। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि भारतीय भाषाएं समाज को एकजुट करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सभी भारतीय भाषाएं राष्ट्रीय भाषाएं हैं। श्री प्रधान ने बताया कि पिछले वर्ष सरकार ने कई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया।
हमारे पास 6 क्लासिकल लैंग्वेज होती थी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया। बीते साल सरकार ने और 5 भाषाओं को सांस्कृतिक भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का मान्यता दिया है, मराठी, बंगाली, ओहमिया और दो प्राचीन भाषा पाली और प्राकृत।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा संबंधी तनाव से निपटने के उद्देश्य से विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श सहायता शुरू की है। CBSE की परीक्षाएं इस वर्ष 17 फरवरी से शुरू हो रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सेवा तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने के बारे में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है।
कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क परामर्श इस वर्ष 1 जून तक जारी रहेगा। इस पहल का उद्देश्य परीक्षा संबंधी तनाव को कम करना है। विद्यार्थी टोल फ्री नंबर 1800118004 पर हिंदी और अंग्रेजी में 24 घंटे सहायता प्राप्त कर सकते हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षता सिंह।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाख रिफाइनरी में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की शेष उन्नयन सुविधा के सफल संचालन की सराहना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी के एक पोस्ट को साझा किया है। श्री मोदी ने कहा कि ये अत्याधुनिक परिसर आत्मनिर्भर भारत की भावना के अनुसार ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। बांग्लादेश के नरसिंहदी शहर में अज्ञात हमलावरों ने एक 40 वर्षीय हिंदू व्यक्ति की हत्या कर दी। किराना व्यापारी मोनी चक्रवर्ती की हत्या थोड़े ही समय में इस तरह की चौथी घटना है। बांग्लादेश पुलिस के अनुसार मोनी चक्रवर्ती की कल रात 11 बजे हत्या की गई। मोनी अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया। देश के कई हिस्सों में घने कोहरे के कारण रेल सेवाएं प्रभावित हैं। कई रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार कम दृश्यता के कारण दिल्ली आने वाली 70 से अधिक गाड़ियां देरी से चल रही हैं। यात्रियों को स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी रेलगाड़ियों की स्थिति की जानकारी लेने का परामर्श दिया गया है। भारत के लक्ष्य सेन ने मलेशिया के कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिंगापुर के जिया हेंग जेसन तेह को हराकर पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। उनका अगला मुकाबला फ्रांस के क्रिस्टो पोपो या हांगकांग के ली चेउक यू से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।